नमस्कार, आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। मैं क्या हूं? और इसके लिए हम देख रहे हैं श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब मैं क्या हूं, आत्मा की खोज। इसका जो तीसरा अध्याय है उसमें जो बातें हैं उन पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे।
जी नमस्कार। हाँ, यह अध्याय हमें रोजमर्रा के जो अनुभव है ना, शरीर के, इंद्रियों के, उनसे थोड़ा आगे ले जाता है, मन की दुनिया में और फिर आत्मा तक। और इसमें गीता का वो श्लोक भी है 342, जो एक तरह से भूमिका बनाता है।
हाँ हाँ, वो श्लोक
कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से भी परे है बुद्धि, और सबसे परे वो है आत्मा। तो स्रोत हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ाता है।
अच्छा, तो मतलब आज की बातचीत का मकसद ये है कि हम मन के इन अलग अलग लेवल्स को समझें और ये पहचाने कि जिसे हम आमतौर पर मैं कह देते हैं, अपना अहम, वो असल में क्या है और क्या नहीं है।
बिल्कुल। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, शरीर से खुद को अलग समझना शायद फिर भी थोड़ा आसान हो।
हाँ, वो तो लगता है।
लेकिन मन और बुद्धि के लेवल पर, वहां अपने असली मैं को पकड़ना, वो ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत लोग तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं के बहाव को ही बस वही आत्मा है ऐसा मान लेते हैं।
जी, कि एक बड़ी भूल है।
अच्छा, तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए लेखक ने मन को मतलब तीन हिस्सों में बांटा है, एक तरह का नक्शा दिया है।
हाँ, एक तरह से पहला लेवल है प्रवृत्त मानस।
प्रवृत्त मानस, ये क्या है?
इसको आप समझ सकती हैं हमारा सबकॉन्शियस मन,
अवचेतन।
हाँ।
अच्छा,
जो बिना हमारी जानकारी के बहुत सारे काम करता रहता है, जैसे पाचन है, सांस लेना है।
हाँ हाँ।
या फिर हमारी जो पक्की आदतें बन जाती हैं।
हाँ,
वो भी यहीं से चलती हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि लेखक कहते हैं हमारे पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, या कई बार जो हमारी अनकंट्रोल्ड पार्श्विक इच्छाएं होती हैं, गुस्सा, जलन, स्वार्थ, वो भी यहीं जमा हो सकती हैं। और ये हिस्सा आसानी से बदलता नहीं है।
तो ये जैसे बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता।
पर दूसरा लेवल है प्रबुद्ध मानस।
ये तो शायद वही है जिसे हम अपना मन कहते हैं, जिसे सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये हमारा जागा हुआ, तर्क करने वाला, विश्लेषण करने वाला मन है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, रोज के काम कर रहे हैं, तो इसी का इस्तेमाल हो रहा है।
जी।
पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात लेखक कहते हैं कि ये प्रबुद्ध मानस, चाहे कितना ही शार्प क्यों ना हो,
हाँ,
ये भी हमारा असली अहम नहीं है। ये भी सिर्फ एक टूल है, एक उपकरण।
अरे, मतलब जिसे हम अपनी पहचान का सेंटर पॉइंट समझते हैं, वो भी बस एक औजार है।
तो फिर तीसरा स्तर अध्यात्म मानस, क्या वो असली मैं के ज्यादा करीब है? क्योंकि उसमें तो अच्छी चीजें आती है ना, प्रेम, दया, न्याय, भक्ति। हाँ, ये चेतना का एक ऊंचा स्तर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। और लेखक मानते भी हैं कि अपने असली अहम की झलक वो यहीं से मिलनी शुरू होती है। लेकिन फिर वही बात, लेखक यहाँ भी बहुत साफ कहते हैं।
क्या?
कि अध्यात्म मानस भी अपनी सारी अच्छाई के बावजूद खुद अहम नहीं है। ये भी आत्मा के प्रकाश को दिखाने का एक माध्यम है, पर खुद आत्मा नहीं। जैसे कोई मणि होती है ना, वो खुद चमकदार है।
हाँ।
पर उसे कपड़े में लपेट दो तो चमक छिप जाती है। वैसी आत्मा खुद प्रकाश है, पर ये मन के स्तर उसे ढक सकते हैं।
अच्छा, तो मतलब ये तीनों, प्रबुद्ध और अध्यात्म मानस, ये सब मन के ही हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हैं, पर असली मैं नहीं है। असली मैं या अहम वो है जो इन सबको देख रहा है, इनका साक्षी है।
बिल्कुल सही, एकदम यही। लेखक यहाँ एक इंजीनियर का उदाहरण देते हैं। जैसे इंजीनियर अपनी फैक्ट्री की हर मशीन को समझता है, उसे कंट्रोल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की इन सारी हरकतों को, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, इनको बस देखना है, तटस्थ होकर, और फिर कंट्रोल करना सीखना है। ये सिर्फ जानने से नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास चाहिए।
लेकिन अगर हमने ये समझ लिया कि मैं मन नहीं हूं, तो फिर अभ्यास क्यों? ये महसूस क्यों नहीं हो जाता अपने आप?
क्योंकि ये समझ सिर्फ दिमाग में ना रहे, अनुभव में उतरनी चाहिए। प्रैक्टिस से, ध्यान से, डिसिप्लिन से ही हम सीखते हैं कि अपनी पहचान इन विचारों और भावनाओं से हटानी है। लक्ष्य ये है कि ये महसूस हो, ये भावना मेरी है, पर ये मैं नहीं हूं।
अच्छा,
तब हम मन के गुलाम नहीं रहते, उसके मालिक बन सकते हैं। लेखक ने कुछ बीज मंत्र जैसे भी दिए हैं, जैसे मैं सत्ता हूं, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। या मैं मन से भिन्न हूँ, शायद ये प्रैक्टिस में मदद करे।
तो ये जो एहसास है मैं हूँ का, जो इन सब मानसिक चीजों के पीछे हमेशा रहता है, क्या यही आत्मा का सबूत है?
लेखक के अनुसार हाँ, ये जो लगातार होने का भाव है, ये जो साक्षी चेतना है, यही आत्मा का लक्षण है
जी।
ये अहम शरीर बदले मन बदले ये नहीं बदलता, ये अमर है, अजर है, अविकारी।
तो अगर सार निकालें तो इस अध्याय से ये समझ आता है कि हमारा असली रूप शरीर, इंद्रियों और यहाँ तक कि मन के तीनों लेवल से भी परे है
जी।
ये एक शुद्ध साक्षी चेतना है जिसे अहम कहा गया।
बिल्कुल सही सार निकाला आपने।
और अंत में लेखक हमें एक और गहरे विचार के पास ले जाके छोड़ते हैं।
वो क्या है?
वो इशारा करते हैं कि ये जिससे हमने अभी शुद्ध अहम या आत्मा समझा, वो भी शायद पूरी तरह से आजाद नहीं है, बल्कि वो उस परम सत्ता का, परमात्मा का ही एक अंश है।
ओ, ये तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर हमारा असली मैं या अहम इस मन शरीर के खेल से इतना अलग है, तो फिर इस अहम का उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से क्या रिश्ता है, कैसा कनेक्शन है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।
आगे की खोज के लिए एक नया रास्ता खुलता है।